हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी। सभी दीदी जी का बहुत प्यार से एक प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम करते हैं। हमारे दीदी जी 1968 से ये ईश्वरीय राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 42 इयर्स से आप बाबा की सेवाओं में समर्पित हैं। द्वारका तथा उसके कनेक्शन के सारे सेवा केंद्रों के दीदी जी डायरेक्टर हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक्सीलेंट सर्विस अवार्ड से दीदी जी को नवाजा है। और साथ में हम देखते ही हैं कि स्पार्क के बहुत एक्टिव फैकल्टी हैं। तो दीदी जी का आज का विषय है प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते हुए कदम। बहुत गहन विषय है। हम सभी बहुत एकाग्रता से इन सभी दीदी की बताई हुई बहुत वैल्यूएबल मार्गदर्शन को सुनेंगे।
ओम शांति। आप सबको विदित होगा कि दिल्ली जोन को जो प्रोजेक्ट मिला हुआ अभी तक रहा वो था स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी सुदर्शन चक्रधारी सुविश्व राज्य अधिकारी। पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले वर्ष हमने फरिश्ता स्थिति का एक्सपीरियंस किया, फिर अनादि स्वरूप का एक्सपीरियंस, उसके बाद आदि स्वरूप जो इस बार आपने सुना ईशु बहन से, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। इस वर्ष हमने प्लान लिया है 2023 में प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम पूज्य स्वरूप, क्योंकि पूरा चक्र कंप्लीट होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं बाबा मुरली में बार बार एक ही बात हम बच्चों के आगे दोहराते हैं, बच्चे जितना जितना आप संपूर्णता की स्टेज के नजदीक आते जाएंगे तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। बाबा कई बार कहते हैं जिन्होंने विश्व के आगे प्रत्यक्ष होना है वो अभी पर्दे के अंदर हैं, घूंघट में हैं, क्योंकि मूर्तियां संपूर्ण रूप में तैयार नहीं हुई हैं। और हम सभी देखते हैं, बाबा ने कई बार एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आपका चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं या किसी का मूड ऑफ है या कोई जोर से हंस रहा है, अलग अलग मूड चेंज होते हैं, तो बच्चे कैसे आप भक्तों को अपना साक्षात्कार कराएंगे। इसलिए आपको अपनी संपूर्णता के लिए अपनी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क व्यवहार इन सभी बातों पर पूरी तरह से अटेंशन देना है। अटेंशन देने का मतलब है कि श्रीमत के आधार से हर कर्म करना और आपके स्वरूप में आपका संपूर्ण स्वरूप दिखाई दे और बाप दादा प्रत्यक्ष हो। अभी तक हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे सेवा केंद्र पर आएं, राजयोग का अभ्यास करें, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, आप आकर के एक्सपीरियंस करें। तो सिद्ध करना पड़ता है कि भगवान पढ़ाते हैं आपको, ये कैसे आप कह सकते हैं। लेकिन हमें मुख से कहना न पड़े कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमारे स्वरूप से उन्हें समझ में आए कि सचमुच में ये परमात्म पालना में पलने वाले बच्चे हैं, स्वयं भगवान इनका श्रृंगार कर रहा है। इतनी तो लोगों के अंदर अभी बात आई है, कोई नए लोग ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन करते हैं तो उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वहां जाने के बाद परिवर्तन जरूर आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो परिवार वाले भी कहते हैं कि आप वहां जा रहे हैं, वहां जाने के बाद आप ऐसा करते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं कि यहां आने से पॉजिटिव चेंज आता है, और अगर नहीं आया है इसका मतलब आप उस पर अमल नहीं कर रहे। तो अब लोगों की जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए समय क्योंकि ज्यादा नहीं है, और बाबा ने कहा आपको दो तरह के बच्चे हैं, एक है समय से पहले अपने को तैयार करने वाले और एक है समय आने पर तैयारी में रहने वाले। तो आप सभी अपने को किस कैटेगरी में समझते हैं, समय से पहले तैयार होना है या समय आने तक तैयार होते रहना है? क्या कहेंगे? जो कहते हैं समय से पहले तैयार होना है वो हाथ उठाएंगे? 100%। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम सब इस पाक की भट्टी में आए हैं, और इस भट्टी का लक्ष्य भी यही है कि हम जो कहते हैं उसको अपने पर एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, और फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम दूसरे को बात सुनाएं। तो ज्ञान तो हम सब ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन अब बात है कि एक एक बात को अपने जीवन में धारण करना। तो इस साल जो हमारा प्रोजेक्ट है प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम, उसमें मुख्य रूप से 7 पॉइंट्स पर हम सभी मनन करेंगे। पहला है सर्व शक्तियों से संपन्न, क्योंकि जो हमारा श्रृंगार है वो हमारी शक्तियां हैं। और दूसरा है विघ्न विनाशक स्थिति। तीसरा है वरदानी मूरत। चौथा है रहम दिल की भावना। पांचवा है उद्धार मूरत। हम सबका अभी से उद्धार करेंगे, आधार मूरत समझेंगे तो उद्धार मूरत जरूर बन जाएंगे। और फिर है साक्षात्कार मूरत, स्नेही स्वरूप। ये सारी बातें, इस पर हम लोग सारे साल में एक एक स्थिति का अभ्यास भी करेंगे, और अंत में जो समय हमारा होगा उसमें हम उस चीज को रिवाइज करेंगे। स्नेही मूरत, तो अब इतना तो हम इसका विस्तार यहां नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जैसे बाबा हमेशा कहता है कि आप सर्व शक्तियों से संपन्न बने। आपने देखा होगा कि शक्तियों को बाबा हमेशा कहता है कि भक्त लोग पुकार रहे हैं अपने अपने इष्ट को, और बाबा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है जिस इष्ट में उनकी भावना है उनके द्वारा। कराने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान बाबा। पर जिस इष्ट में उनकी भावना है उनके द्वारा वो उनकी भावना को पूर्ण करता है। लेकिन बच्चे आपको अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होना है। आप विजुअलाइज करें कि आपके सामने लाखों भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं, तो आपका श्रृंगारी स्वरूप कैसा होगा? जब शक्तियों की बात आती है, सर्वशक्ति संपन्न, इसमें केवल आप अपने सामने देवियों की इमेज लेकर नहीं आए, एक आत्मा के नाते, शक्ति का मतलब पावर्स अर्थात डिविनिटी, कि हमारे व्यवहार में, हमारे संकल्प में, बोल में, कर्म में दिव्यता हो, प्योरिटी एंड डिविनिटी। चाहे आपने मेल का चोला पहना है या फीमेल का, लेकिन शक्ति स्वरूपा बनकर के कार्य क्षेत्र पर आना है। और बाबा हमेशा कहता है, बच्चे जब आप सर्वशक्तिवान बाबा को अपना साथी बना लेते हैं तो सर्वशक्तियां स्वतः आप में आने लगती हैं। यूं तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर हम 8 शक्तियों को इलेबोरेट करें, थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे, अटेंशन देने की जरूरत है। तो सबसे पहले पावर टू विड्रॉ, जिसको हम कहते हैं संकीर्ण शक्ति। संकीर्ण शक्ति का मतलब क्या है कि आसपास में कुछ भी हो रहा है, सब तरफ से अपने आप को विड्रॉ कर लें, अर्थात डिटैच। कछुआ का एग्जाम्पल दिया है कि वो कर्म के समय कर्म इंद्रियों को बाहर ले आता है, कर्म पूरा होने के बाद वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। अगर उसके ऊपर आप हैमर भी लगाएंगे तो भी वो उसका इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। यहां तक कि भारी ट्रक भी अगर गुजर जाएगा तो भी आप नोटिस करेंगे कि उस हालत में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो ऐसे ही जब हम कार्य क्षेत्र पर आते हैं, ऐसा अभ्यास कर लें कि बिल्कुल डिटैच्ड, कर्म के समय मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई हूं कर्म के लिए, कर्म पूरा हुआ देह से डिटैच हो गए। और डिटैचमेंट नेचर का लॉ है, हमें फिजिकली भी डिटैच्ड होना है, इमोशनली भी डिटैच्ड होना है। क्योंकि फिजिकली अगर हम देखें, ये जो कहावत है अकेले आए अकेले जाना, बाबा कहते ना अकेले आए अकेले जाना, अकेले में अकेले बाप को अकेले धाम में याद करना। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप सोचिए क्या वो कंफर्टेबल रहेंगे, कोई भी काम करते कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए डॉक्टर के पास जाके उन्हें ये कहा जाता है ऑपरेशन से इन्हें अलग करो। अलग करने के बाद वो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। हो सकता है एक को सोने की इच्छा हो, दूसरे को खाने की इच्छा हो, एक खड़ा होता है दूसरा बैठ जाता है, एक घर देखता है दूसरा बाहर जाता है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे कंफर्टेबल है, खुश है। तो डिटैचमेंट खुशी देती है या दुख देती है, बताएं? लेकिन अभी तक हम इस इल्यूजन में हैं, लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे तो ये कैसा प्यार हुआ। लेकिन अगर हम सचमुच में डिटैच्ड हैं, फिजिकली अटैच होना है किसके साथ? बाबा के साथ। क्योंकि कोई भी प्रकार का विकार, चाहे वो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, ईगो है, हेट्रेड है, उससे हमें अंततः दुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली शक्ति अभ्यास करें अगर हम अपनी अल्टीमेट स्टेज तक जाना चाहते हैं, विश्व के आगे प्रत्यक्ष होना चाहते हैं, तो क्या है, सब तरफ से विड्रॉ करें, डिटैच्ड हो जाएं, व्यक्ति से, परिस्थिति से। परिस्थिति भी कैसी हो, परिस्थिति, व्यक्ति, उनके स्वभाव, उनका प्रभाव मुझ पर ना हो, पर मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति से उस वातावरण, उस व्यक्ति को चेंज कर सकूं। कई बार हम इमोशनली भी अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनली अटैच्ड का मतलब है कि कोई बात में कोई व्यक्ति का मूड खराब है, उसको देख के मेरा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा अटैचमेंट है कि उसकी मानसिक स्थिति, वो उदास है, निराश है, हताश है, परेशान है, तो उसके साथ हम भी उदास, निराश, हताश, परेशान, क्या ये विजडम है? क्या कहेंगे इसको? विजडम कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अगर हम सचमुच में संपूर्णता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें इमोशनली भी अटैच्ड नहीं होना है। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की हो, वो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसीज में नहीं रहना है, हमने किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। इंटरडिपेंडेंट हैं हम सभी, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के बिना समाज नहीं चल सकता, हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर हम किसी पर डिपेंडेंट हो गए तो हम जरूर उदास होंगे। उदास मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव का दास है, इसलिए उदास है। तो ये हमको सदा सोचना पड़ेगा कि ये शक्ति प्रैक्टिस में लानी है, खाली सुनना नहीं है। अपने आप को देखते रहें, हम कहीं किसी के साथ इमोशनली अटैच तो नहीं है। कई बार हम अपने आइडियाज से भी अटैच्ड हो जाते हैं। आइडियाज समझते ना, जो मेरा सोचना है वो ठीक है, मेरी पहले से कंडीशनिंग है, उसके बिन उसकी उस सोच के हिसाब से मैं दूसरे के विचार को सत्कार नहीं देती हूं, है ना। तो इन सभी बातों से हमें क्या करना है? विड्रॉ करना है। अब विड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि आपको आइसोलेशन में नहीं जाना है सन्यासियों की तरह से। इसलिए दिखाते हैं शिव शक्ति, मतलब शिव और पार्वती, पार्वती का परिवार दिखाते हैं, फैमिली, कि परिवार में रहते हुए सबसे न्यारा, परिवार को छोड़कर नहीं, परिवार में रहकर के न्यारा। तो इस प्रकार का अभ्यास हम करते रहेंगे तो हमारे कदम अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ, संपूर्ण स्वरूप की तरफ बढ़ते रहेंगे।
सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं।
बस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
दूसरी शक्ति आती है समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। अब समेटना है कहीं, हमने बाबा कहता हर घड़ी तुम्हारी आखिरी घड़ी है, कोई भी श्वास तुम्हारा आखिरी हो सकता है। सदा याद रखो कि हम सबको अपने घर जाना है। जब ये बुद्धि में याद रहेगा तो एक समेटने की अभी से प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी। अब देखेंगे हम कोई भी बात को, पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ समय पहले कुछ किया, हम वो बात को पकड़ के रखते हैं। वैसे अगर ये कहा जाए कि आज की मुरली का सार क्या था, तो शायद ही किसी को याद हो, क्योंकि हम उसको दोहराते नहीं हैं, रिपीट नहीं करते। और कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि आज सवेरे ब्रेकफास्ट क्या किया था। एक दूसरे से पूछते हैं, भी आज नाश्ते में क्या था, पूछते हैं ना, या याद करना पड़ता है। लेकिन बातों को हम लेट गो नहीं करते, पकड़ कर रखते हैं। तो जो हमारी बुद्धि बिखरी हुई है चारों तरफ, इतना अटेंशन डाइवर्ट हुआ है, इसने ये कहा, इसने क्यों कहा, इसने कैसे कहा, इसने ये बात कह दी, इसकी इंटेंशन क्या थी, मैं जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल सकती। तो मैंने अपने मन को क्या बता दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो आप देखेंगे कई सालों तक हम उस बात को पकड़ के रखेंगे। और अगर आज मेरा श्वास चला जाए तो आप सोचिए वो सारी बातें किसके साथ जाएंगी। आत्मा तो जर्नी पे है ना, वो साथ में जाएंगी। इसलिए साथ साथ लेट गो करने का संस्कार हो, साथ ही साथ समेटते जाओ। कई कई ऑफिसर्स की आदत होती है, वो अपनी टेबल को रोज क्लीन कर देते हैं, रोज की रोज। कई पेंडिंग रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे उनको लगता है तो बहुत भारी काम है, फिर आज का काम फिर थोड़ा कम करेंगे, फिर नेक्स्ट डे, फिर और एक दिन टेबल पे बहुत सारा वर्क जमा हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों का इतना ज्यादा काम है, हम सोचते ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत मुश्किल है संपूर्ण बनना, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बाबा डायरेक्शंस देते हैं हम उसको साथ के साथ करते जाएं, ज्यादा कुछ भारी ना करें अपने आप को। एक सप्ताह या एक दो सप्ताह तक प्रैक्टिस करें कि मुझे किसी की बात को पकड़ के नहीं रखना। कई बार हम अपनी बात को ही पकड़ के रखते हैं, मैंने उस दिन ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या हो गया था, मेरे दिमाग उस समय कहाँ चला गया था, ये तो बहुत गलत हुआ है ना, गिल्ट जो फील होती है। और बाबा हमेशा कहता है बच्चे, जो हो गया हो गया, आपने महसूस किया आपसे राइट नहीं हुआ, आगे से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं हर कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सोच समझ कर करूंगी, जल्दबाजी में नहीं करूंगी, बहुत धैर्यता से, और आज जो हुआ उसे भूल जाओ। बार 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 याद करने से अपने में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, गिल्ट कॉन्शियस फील होता है, आत्मा भारी हो जाती है। अब आप बताओ, भारी आत्माएं जो स्वयं ही भारी हैं, वो अपने भक्तों को इष्ट बन के साक्षात्कार कैसे कराएंगी। तो अगर हम खुद हल्के होंगे, बिल्कुल लाइट, मन शांत है, कोई थॉट नहीं है, मैंने पास्ट को पकड़ के नहीं रखा है, तो आप देखेंगे आपके स्वरूप से आत्माएं जो लेना चाहेंगी वो लेकर जाएंगी। ऐसे ही इसलिए इसमें जो दिखाया है यादगार दुर्गा का, दुर्गा क्या है, शस्त्रधारी भी है, और शेर सवारी भी है। यानी सारी चीजों को खत्म करने की उसमें शक्ति है, इसलिए जो पावरफुल है उसको उसने अपने अधीन कर लिया। और लव एंड लॉ का बैलेंस है, लॉफुल होकर कार्य करने वाली, प्यार भी है और शक्ति भी है। इसलिए देवियों की आंखों में एक तरफ तो लव दिखाते हैं, उनकी आंखें बहुत गीली दिखाते हैं, और दूसरी तरफ शक्ति स्वरूपा दिखाते हैं। तो हमने दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में रहना है, इस बात का हम अटेंशन जरूर रखें। तीसरा जो है एक टॉलरेंस पावर की बात आती है, जिसको हम सहन शक्ति कहते हैं। हमें इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि माँ का एक गुण होता है, वो अपने बच्चे की बात को सहन कर लेती है। क्यों सहन करती है? क्योंकि वो स्नेही है, अफेक्शनेट है। और इसका यादगार जगदम्बा माँ है। बाबा कहता है, बच्चे तुम दो या चार आत्माओं की पालना के निमित्त नहीं हो, लेकिन सारा विश्व तुम्हें जग जननी कहकर पुकार रहा है। तुम सारे विश्व को नर्चर करने वाली आत्माएं हो, इसलिए तुम्हारा स्वरूप क्या होना चाहिए? तो स्नेही कौन बन सकता है, आप बताएं, जो कोई भी गलती को माफ कर देगा। बाबा हमेशा कहता है, बच्चे आप ये सोचो, सोच के चलो इस बात को, जिस व्यक्ति ने जो भी किया, अपने संस्कारवश किया, मेरा भी उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था, अच्छा है अकाउंट सेटल हो गया, वो कमजोर आत्मा है, मुझे अपनी शक्ति से उस आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। और उसके प्रति कोई मन में भावनाएं चेंज नहीं करनी है, पर हमेशा प्योर वाइब्रेशंस, दृष्टि वृत्ति, शुभ भावना शुभकामना रखते हुए उस आत्मा को प्यार देना है। जितना हम स्नेह देते जाएंगे, जितना प्यार देते जाएंगे, वो आत्मा आपके कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, फिर आप जैसा परिवर्तन चाहेंगे वैसा उससे करा सकते हैं। लेकिन कहते हैं, प्यार भी कौन दे सकता है, जिसके अंदर में जो है वही दूसरे को देगा। तो सबसे पहले हम अपने आप से प्यार करना सीखें। सबसे पहले हम अपने आप से भी प्यार नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि जो अपने को क्रिटिसाइज करता है, अपने से नफरत करता है, अपने में गिल्ट फील करता है, अपने में बार बार परेशान या उलझा हुआ रहता है, आप देखेंगे आप उससे ओम शांति भी करेंगे ना, वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर में जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत मुझे अपने से करनी है, मैं अपने से प्यार करूं, जो मेरे बाबा के गुण हैं वो मैं अपने जीवन में धारण करूं। मेरा बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम सुख शांति मुझ आत्मा का निजी स्वरूप है, निजी गुण है, ये मेरी रियलिटी है, मेरी रॉयल्टी है। मेरा मन भी एक बच्चा है, मुझे इस बच्चे से बहुत प्यार करना है। अगर मैं प्रेम से भरपूर हूं, तो जो आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आएगी उसके प्रति मैं प्यार ही दूंगी। और जहां प्यार है वहां सहन करना मुश्किल नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है ना, मैंने बहुत सहन किया, आपको क्या पता मैंने बहुत सहन किया, इसका मतलब उसने सहन किया ही नहीं। क्योंकि जहां प्यार है वहां तो सहन लगता ही नहीं है। इसका मतलब हम बाहर से सहन करते हैं, मुख से नहीं बोलते, व्यवहार में ध्यान रखते हैं, लेकिन अंदर में हर बात का इम्प्रेशन मानस पटल पे अंकित होता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब सहन तो नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं, एक है एक्सेप्टेंस और एक है सप्रेशन। तो आपने अपने आइडियाज को सप्रेस किया या एक्सेप्ट किया, दोनों में फर्क है। तो जितना जितना एक्सेप्टेंस आती जाएगी, आप रिएक्टिव फोकस आपका नहीं रहेगा, आप प्रोएक्टिव हो जाएं। प्रोएक्टिव का मतलब अपने में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन आपकी पॉइंटिंग फिंगर दूसरे पर नहीं जाएगी। तो इसलिए इसके लिए जगदम्बा माँ को दिखाते हैं, है ना, उस पावर, क्योंकि माँ का स्वरूप है वो, मातृ स्नेह की शक्ति। तो हमें केवल अपना लिमिटेड दृष्टिकोण नहीं रखना है, ब्रॉड विजन हो हमारा। उसके बाद दिखाते हैं पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। समाने का मतलब है कि कैसा भी कोई बात हमारे सामने है, कुछ भी बात आ जाए, एक गंभीरता का गुण हो अपने अंदर हम समा लें। कई बार हम जब तक यहां की बात वहां ट्रांसफर ना करें, हमें अपच महसूस होती है, लगता है, तो अपने अंदर हम देखते जाएं, हम प्रत्यक्षता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे प्रत्यक्ष होंगे अगर हम छोटी छोटी बातों को यहां से उठा के यहां ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं, हम अपने आप को देखें, अपनी गलती होगी तो हम कैसे कोशिश करते सबके बीच में पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन दूसरे की गलती को हम बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। तो हमारे अंदर में एक ये रहे कि मैं गुणग्राही दृष्टि रखूं। बाबा कहता है बच्चे जितनी भी आत्माएं यहां बैठी हैं ना, ये सब पूज्य स्वरूप आत्माएं हैं, सब देवी देवताओं की आत्माएं हैं। एक एक देवता के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े हैं और ये अपने ये सारी देवी देवताओं की आत्माएं यहां विराजित हैं। अगर इतना ऊंचा दृष्टिकोण हमारा हो जाएगा तो हम सारे दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, सबके अंदर हम गुण देखेंगे, कोई की कमी हमारे नोटिस में नहीं आएगी। जब कमी नोटिस में नहीं आएगी तो हम अगर कोई बात बताएंगे भी सही तो पॉजिटिव बताएंगे। अभी तक क्या होता है, हमारा ध्यान नेगेटिविटी पर ज्यादा जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के अंदर कोई बात है तो हम उसको बताएं नहीं, बताएं जरूर, लेकिन बाबा हमेशा कहता है बच्चे पहले उसके गुणों को मध्य नजर में रखते हुए फिर बताएं, तो उसमें शक्ति आएगी तो आप उसको शुभ भावना से ठीक कर पाएंगे। फिर आती है नेक्स्ट परखने की शक्ति। परखने की शक्ति किसका यादगार है, आप देखेंगे जब तक हमने अपने आप को नहीं परखा है हम दूसरे को भी नहीं परख सकते, है ना। बाह्य स्तर पे हम सिर्फ उसका व्यवहार देख लेते हैं और हम डिसीजन दे देते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो है ही ऐसा, ऐसा नहीं है। जितनी हमारी हाई वाइब्रेशंस होती जाएंगी, जितनी ज्यादा हाई वाइब्रेशंस होंगी उतना हमारी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। क्या होता है कि जब हमारी वाइब्रेशंस हाई नहीं होती तो हम बाह्य स्तर पे उसका व्यवहार देखते हैं, लेकिन अंदर से वो आत्मा कैसी है उसको हम नहीं परख सकते। कई बार बाहर से कोई व्यक्ति बहुत मीठा होता है लेकिन अंदर से जरूरी नहीं है उतना अच्छा भी हो। कई बाहर से ऐसे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत साफ होते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है साज को ना देख के राज को जानो बच्चे। तो जिनमें परखने की शक्ति होगी वो ऐसी आत्मा को परखेगा, ठीक है ना। और जब तक परख शक्ति ठीक नहीं है तो डिसीजन मेकिंग पावर काम नहीं करती है, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या झूठ है क्या सच है, ये हम नहीं डिसीजन ले पाएंगे। और बहुत सारे लोग डिसीजंस लेने के लिए हमेशा दूसरों से पूछते हैं, आप क्या समझते हैं हमको क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा, मेरी बुद्धि बिल्कुल क्या हो गई है। जैसे ना बुद्धि जो है क्या है, फिल्टर है, आरओ लगे होते ना तो उसमें फिल्टर होता है, जब फिल्टर चोक हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, फिर आरओ की सर्विस वाले को बुलाते हैं कि आप जरा देखें चेक करें, तो कहता है आपको फिल्टर चेंज करने की जरूरत है, ये चोक हो गया है, क्योंकि उसमें क्या फंस जाता है, क्या फंस जाता है, कचड़ा फंस जाता है। ऐसे अगर बाहर की बातें इधर उधर की बातें का प्रभाव मेरी बुद्धि में आ गया तो मेरी बुद्धि भी चोक हो जाएगी। वो बिल्कुल सही डिसीजन नहीं दे पाएगी, अगर ले भी लेंगे डिसीजंस तो रॉन्ग होंगे, और फिर जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़ेगा। हो सकता है वो डिसीजन किसी की लाइफ को बदल दे। अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, समाज के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम ये सोचें कि हमारी बुद्धि बिल्कुल बाबा की याद में एकाग्र हो। जितना एकाग्र बुद्धि होगी, जितना सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्शन होगा, जैसे तराजू होता है ना, उसका बीच का कांटा ठीक है तो तराजू ठीक तोलता है। हमारा बुद्धि रूपी कांटा शिव बाबा की याद में जितना एकाग्र होगा, उतना बुद्धि रूपी तराजू राइट डिसीजंस लेगा, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा की याद में बैठे हैं, नेचुरल वे से इतना अच्छा इंस्पिरेशंस आती हैं और हम कर लेते हैं और उससे बहुत बेनिफिट होता है। हम कहते हैं, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। इसका मतलब जो बुद्धिवानों की बुद्धि है उसके साथ आप कनेक्टेड थे, इसलिए वो इंस्पिरेशन आपको मिली और आपने उसे रिसीव किया और आपने अमल में लाया। तो सारा खेल किसके ऊपर है कि बुद्धि को हम, जिसको कहते हैं क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट, इतना क्लियर क्रिस्टल डिसीजन आपको आएगा, द्वंद नहीं रहेगा, है ना। और डिसीजंस लेने के लिए आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, और डिसीजंस लेने के बाद आपको अगर उसके लिए कुछ फेस करना पड़ेगा तो आप नर्वस नहीं होंगे। आप सोचते हैं कि मैंने डिसीजन जो लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे। तो देखिए, जितना जितना बाबा से योग की शक्ति बढ़ती जाएगी, ये शक्तियां अपने आप काम करेंगी, ठीक है ना। तो हमको ऐसा बनना है, ये शक्तियां ऑटोमेटिक हमारा काम करें, हमें इसके लिए बहुत समय वेस्ट ना करना पड़े। और जब हम इस प्रकार की डिविनिटी अपने अंदर लाएंगे तो बहुत सारी आत्माएं आपसे सलाह लेने के लिए आएंगी। अभी तो हम खुद ही दूसरों से सलाह मांगते हैं, भाई बताओ क्या करना है। जैसे बाबा कई बार कहता है, बच्चे सतयुग में जा रहे हैं ना आप सभी, है ना, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां तुम्हें एडवाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भगवान ने एडवाइस दी है वो लंबे समय तक, 21 जन्मों तक आपके साथ रहेगी, वहां तुम्हें कोई वजीर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका एक्सपीरियंस हम अभी से करना है हमको। तो जितना जितना हमारी साइलेंस की शक्ति होगी, बिल्कुल बुद्धि शांत होगी, बाबा के साथ कनेक्टेड होगी, आप देंगे, आपको बहुत सुंदर इंस्पिरेशंस आएंगी, आप सही डिसीजंस लेंगे। तो इसके लिए हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रखें। नेक्स्ट आता है सामना करने की शक्ति। तो जितना जितना हमारे अंदर डिसीजंस अच्छे होंगे तो आपके संकल्प शांत होंगे। कई बार हम कोई काम कर लेते हैं ना, बाद में बहुत थॉट्स चलते हैं, तो जितने ज्यादा थॉट्स चलते हैं, ये तो ठीक नहीं किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ठीक आए नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, तो जितने थॉट्स ज्यादा चलेंगे आपकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाएगी। मानसिक शक्ति क्षीण होने से आप में सामना करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो सामना करने की शक्ति भी कब आती है, बाबा ने कई बार कहा, बच्चे अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है तभी आप सामना कर पाएंगे। किसी प्रकार की जो कामना है आपकी मानसिक शक्ति को समाप्त कर देती है, उसको पाने के पीछे आप लग जाते हैं और फिर आप सामना नहीं कर पाते, ठीक है। और सामना भी किसी भी बात का सामना करना पड़ सकता है, कोई ऐसी आपके घर में कोई नजदीकी संबंधी है उसकी मृत्यु हो गई। बाबा ने कहा दो प्रकार की चीजें आपके सामने आएंगी, एक वो जो आपके कंट्रोल में है और एक वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है वो तो आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चर्चा हम बहुत ज्यादा करते हैं। उसकी चर्चा ना करें, उसकी चर्चा बिल्कुल ना करें, लेकिन अब जो कंट्रोल में नहीं है उसका समाधान क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर चिंतन करें। तो जितना समाधान सॉल्यूशन उसका चित्र करेंगे तो आप देंगे, आप परिस्थिति से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे और आपको सोल्यूशन मिलेगा कि अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप आसानी से उस चीज को फेस कर पाएंगे। ये बाबा कहते जितनी शक्तियों का स्टॉक जमा करते रहेंगे उतनी ज्यादा आप साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। ऐसे ही संयोग शक्ति है, संयोग शक्ति ऑटोमेटिकली आप में आएगी। कैसे आएगी? देवी को लक्ष्मी का स्वरूप दिखाते ना, तो लक्ष्मी के स्वरूप में एक हाथ में दुआ है ऐसे ब्लेसिंग्स, और एक हाथ में सोने की जो अशर्फियां हैं वो जा रही हैं। तो ये किसका प्रतीक है? प्रॉस्पेरिटी। ऑटोमेटिक आप में आएगी, आपके द्वारा अनेक आत्माओं को मिलती रहेगी, क्योंकि आपने अपनी मनसा शक्तिशाली बना ली है। वाचा आपकी इतनी शक्तिशाली है कि आप मीनिंगफुल टॉक करते हैं, व्यर्थ की बात नहीं करते, आप सच बोलते हैं, सत्यता को सभ्यता से पेश करते हैं, और कर्म भी आप ऐसे करते हैं जो दूसरों के आगे उदाहरण प्रस्तुत करें, बाप दादा का नाम रोशन करें। जब इतना ज्यादा आप कर रहे हैं तो इससे आपकी जो हाई वाइब्रेशंस होंगी वो वातावरण को बहुत हेल्प करेंगी, आपके परिवार को हेल्प करेंगी, आपके आसपास के एरिया को हेल्प करेंगी, आपके समाज को, पूरे विश्व को मदद करेंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे दुआ दो और दुआ लो, वास्तव में अपने आप को भी दुआएं दो। जब आप सुख देंगे तो आपसे दूसरों से आपको दुआएं मिलेंगी। और ये आपको थोड़ा शक्तियों के बारे में बताया, बाकी तो हमारी ये सारी बातें हैं थोड़ा थोड़ा जो इससे कनेक्टेड हैं आपको बताई थी, वो है विघ्न विनाशक स्थिति। विघ्न विनाशक स्थिति का मतलब है कोई भी प्रकार का विघ्न आए और हमारे सामने आते ही वो खत्म हो जाए। हमारी दादियों का मिसाल ऐसा है, वो ऐसी दर्शनीय मूर्त बन गई हैं, उनके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता भी हुई है, हो भी रही है। हमने महसूस किया कि मैं वो सुना नहीं पाऊंगी जो हमने उनकी देखा। गुलजार दादी हमारे पास आए थे, बहुत लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, बस मात्र उनके 4 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि वो आप हमारे पास आएंगे। तो हमने देखा कि 4 दिनों के अंदर बहुत लंबे समय से रुके हुए काम सारे ठीक हो गए। और जो कल बात चल रही थी, 5 किलोमीटर दूरी पे इतनी तेज बारिश आ रही थी और हमारा एरिया में बरसात बिल्कुल भी नहीं थी। और जब दादी जी रहे करीब 6-7 घंटे रहे, 6-7 घंटे क्योंकि भवन का उद्घाटन था, तब तक बिल्कुल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहा। जैसे दादी जी का वहां से प्रस्थान हुआ, प्रकृति ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया। तो इन आत्माओं के लंबे समय की तपस्या इतनी ज्यादा है कि जे जहां भी जाते हैं कोई प्रकार का विघ्न इनके रास्ते में आ नहीं सकता है। हम इनको फॉलो करते जाएंगे, बाबा को, दादियों को, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वरूप भी विघ्न विनाशक होता जाएगा। विघ्न भी हमारे थॉट से, शब्दों से, व्यवहार से आता है। जितना जितना हम इसको बाबा की श्रीमत के हिसाब से करेंगे, देह अभिमान से मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तब व्यवहार में आएंगे, तो आपके रास्ते पर कोई विघ्न नहीं आएगा। और दूसरी बात है वरदानी मूरत, तीसरा स्टेप। तो जैसे हम जितना शक्ति अपने में धारण करते जाएंगे, हमारे स्वरूप से आत्माओं को वरदान मिलते रहेंगे। वरदान का मतलब क्या होता है? उन्होंने संकल्प किया और आपकी तरफ से उन्हें तथास्तु, ऐसा ही हो, बिना मेहनत के दूसरे को प्राप्ति का अनुभव हो, यह है वरदान। तो कब मिलेगा? जब हमारे पुरुषार्थ में मेहनत खत्म हो जाएगी, पुरुषार्थ नेचुरल हो जाएगा, सारी शक्तियां नेचुरल वे से काम करेंगी, ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि से, हमारे मुख से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, हमारे चलने से, हमारी दिनचर्या से, जो आत्माएं संपर्क में आएंगी उनको वरदान मिलते रहेंगे। ऐसा अपने आप को बनाना है। और है रहम दिल। रहम दिल का मतलब क्या है कि रहम का मतलब जिनके प्रति आपको रहम होगा। रहम किसके लिए आता है? जब हमें ये समझ में आता है कि आत्मा परवश है, इसका दोष नहीं है, इनोसेंट है, इसका कोई कसूर नहीं है, हो गया चलो कोई बात नहीं, हमें इस पर रहम आना चाहिए। जैसे आपने देखा कोई बीमार आदमी होता है तो आपको पता है ये उठ नहीं सकता, कमजोर है, इसको मैं हेल्प करूं तो आप उसकी खूब सेवा करते हैं। तो फिजिकली कोई बीमार होता है ना तो हमको दिखाई देता है, लेकिन कोई इमोशनली वीक है, बीमार है, वो भी समझ में आना चाहिए, उस पर भी हमें रहम आना चाहिए कि ये अपने वश में नहीं है, मुझे अपनी ताकत से इस आत्मा को उठाना है और आगे बढ़ाना है। हो सकता है या नहीं हो सकता? या हम तीन लोग चल रहे हैं, एक गिर गया रास्ते में, उसके साथ हम भी गिर जाएं, ऐसे थोड़ी होगा। हमारा काम है गिरे हुए को उठाना और उसको अपने साथ लेकर चलना। ऐसी रहम की भावना हो, उसमें फिर आपको कोई गाली देने वाला भी हो, अपकारी हो, उस पर भी उपकार करना, गाली देने वाले को गले लगाना। ये नहीं है कि जिसने मेरे साथ अच्छा किया उसके साथ मैं कोऑपरेटिव हूं, जिसने अच्छा नहीं किया उसके साथ मैं नहीं हूं, सबके साथ। तो जो बाबा अभी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, वो प्रैक्टिस हमें हर बात में करनी है कि मैं कितना रहम दिल हूं। अपने आप को चेक करते जाओ। इसलिए देवियों की मूर्तियों के आगे लोग जाते हैं तो रहम मांगते हैं, मांगते हैं ना, तो वो स्वरूप हमें अपना इमर्ज करना है। कभी देवियां ये नहीं कहती कि मैं लंबे समय से दे रही हूं अब मैं नहीं करूंगी, नहीं, उनका एक ही कार्य है, सबको ब्लेस करना। जैसे भी आत्मा आए, जिस भी स्वरूप से आए, उन्हें ब्लेसिंग्स देते जाना। और फिर नेक्स्ट है, हम स्वयं को आधार मुहूर्त समझें। आज भी बाबा ने कहा ना कि तुम विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो, आपके ऊपर लोगों की निगाहें हैं, और जैसा कर्म आप करेंगे उसका प्रभाव देखने वालों पर पड़ेगा। तो सदा सोचें कि हमें पूरा विश्व निहार रहा है। तो जितना आधार मुहूर्त समझेंगे, हम हिलेंगे दुनिया हिल जाएगी, हम स्थिर रहेंगे सब स्थिर रहेंगे। ये स्मृति हमें स्टेबल बनाएगी और हमारी स्टेबिलिटी से आने वाली आत्माओं का उद्धार होगा, और ऐसे धीरे धीरे हम साक्षात्कार मुहूर्त बनते जाएंगे, अर्थात अपनी परफेक्शन से आत्माओं को परफेक्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए गाइड बनेंगे। ठीक है ना? तो बाबा कौन सा स्वरूप चाहता है? कि मस्तक पर तेज हो, नैनों में रूहानियत हो, वाणी में सत्यता की मधुरता हो, होठों पर दिव्यता की मुस्कान हो, वरदानी हस्त हो, चरण कमल के समान हो। ऐसा स्वरूप हमारा दिव्य बन जाए जो लोगों को हमारे द्वारा हमारे संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार हो। ये है संपूर्णता की तरफ बढ़ते कदम। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी, एक हाथ की ताली से दीदी का अभिनंदन करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। बहुत गहन विषय था। हम सभी का ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है कि हम सभी को संपूर्ण बनना है। और दीदी जी जब क्लास करा रहे थे तो ऐसे भी लग रहा था कि दीदी एक बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं। हमें अपने मन के साथ कैसे डील करना है दीदी बहुत सरल शब्दों में बता रहे थे। यही जो हमारा सब्जेक्ट है या प्रोजेक्ट है प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते हुए कदम, इसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन लेकर हमारे बीच में पहुंचे हैं एकता बहन। आप दिल्ली से हैं और आपकी पूरी टीम है अभी जो ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करेंगे, तो मैं अभी आगे इन्हें हैंडओवर करती हूं, ये आगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे।
ओम शांति। ओम शांति। सभी पूज्य आत्माएं, तो कुछ क्षण के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ ईशु बहन, अविनाश भाई और अनुज भाई को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ले लें साथ में। ईशु बहन, अविनाश भाई, अनुज भाई, इस प्रोजेक्ट के गाइड आदरणीय दीदी से तो आप सब मिल ही चुके हैं। दीदी ने आप सबके समक्ष सारे टॉपिक्स और सब रखे हैं, तो अभी यदि बाबा हमसे कहे कि हमें सबको सुख देना है, तो इस क्षण हम क्या करेंगे, कैसे सुख देंगे? हाँ जी, कैसे? मनसा से। तो सब एक दूसरे को थोड़ा सुख दीजिए, अपने नैनों के द्वारा उनको सुख की अनुभूति कराइए। जो भी आपके सामने है आप उन्हें करा सकते हैं। देखते हैं हमारी वाणी की, हमारी नैनों की मधुरता द्वारा कितनी आत्माओं को कितनी देर तक सुख मिल रहा है। अभी हम अपने सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप में आ जाएं। वो कैसा स्वरूप होगा हमारा, बना सकते हैं? सब अपने अपने पोज में स्थित हो सकते हैं। सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप कैसा होगा? ये वरदानी मूर्त है, सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप। ये वरदानी मूर्ति बनाइए, आप सामने आ जाएं ताकि सबको पता चलेगा। हमें अपने इन्हीं संस्कारों को तो इमर्ज करना है और धारण करना है ना। हाँ, बनाइए, उधर फेस कर लीजिए ताकि सबको पता चले। इधर आगे आके उधर फेस कीजिए। दिख रहे हैं? आप सब भी आत्माएं हैं ना, तो भाइयों में कोई गणेश का रूप भी बना सकते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा। आप भी ऐसे टर्न हो जाइए तो भाइयों के सामने एग्जाम्पल हो जाए। बहन करिए, आप कुछ देर तो अपने उस स्वरूप में रहिए, महसूस करें अपनी इन आठों शक्तियों को जो अभी दीदी ने आप सबके सामने वर्णन की, इतनी डिटेलिंग आप सबको बताइए, उसको महसूस करिए अपने स्वरूप के द्वारा। देखिए हम अपने शक्ति संपन्न स्वरूप में कितनी देर स्थित रह सकते हैं। एक मिनट। अब सर्व शक्तियां सर्व को वरदान देंगे, वरदानी मूर्त बन जाए सभी।
शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर में होती है जिनकी पूजा,
चेतन में वो देवियाँ आ गई,
चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
और अभी सब देवियां और देव अपने स्थानों पर बैठ जाएं। थैंक यू। तो जो प्रोजेक्ट है प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम, माना पूज्य स्वरूप, जिसके द्वारा ही हम बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तो इसका जो लक्ष्य है अपने पूज्य स्वरूप के संस्कारों को धारण करना, जो बाबा ने हमें इतनी गहराई बताई है कि एक पूज्य आत्मा में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो सबको अपने में धारण करना। और इसका लक्ष्य है जो दीदी ने अपने वक्तव्य में भी हमारे समक्ष रखा कि पूज्य स्वरूप से संबंध संपर्क में दिव्यता की अनुभूति, क्योंकि आपका हर कर्म अलौकिक हो जाएगा और परमात्मा के संग के रंग में रंगे हुए सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति, ये दो इसके लक्ष्य रखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। आप सबके समक्ष आदरणीय सरोज दीदी हमारे गाइड के रूप में हैं और उन्होंने आप सबको इन एडवांस बहुत सुंदर गाइडेंस इस विषय पे दी। और हमारे प्रोजेक्ट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बीके ईशु बहन, बीके अनुज भाई, अविनाश भाई, तो आप सब इस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और इसकी जो इंस्पिरेशंस हैं, जैसे कि स्पार्क सभी को मालूम ही है किस पर आधारित है, सिर्फ और सिर्फ बाप दादा के महावाक्यों पर, वो साकार और अव्यक्त मुरली हमने उन दोनों से लिए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके लिए हो सकता है, जो कहते हैं कि हम संपन्न संपूर्ण हैं वो हाथ खड़े करें। वेरी गुड। तो आपका तो मैं आह्वान करूंगी कि आप इसमें हमें मदद करने के लिए आएं। और जो कहते हैं कि अभी हमें बनना है, प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होनी चाहिए बाबा की, वो हाथ खड़ा करें। तो आप सबके लिए ये प्रोजेक्ट है, तो आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की टीवी में भी आ गया, बाबा के टीवी में भी पहुंच गया। तो जो लास्ट ऑफ पास जाना चाहते हैं, जो अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देना चाहते हैं, जो अपने गुणों व शक्तियों में को प्रयोग में लाना चाहते हैं, जो ज्ञान स्वरूप बनना चाहते हैं और जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं, क्योंकि बाबा की अभी हम बच्चों से क्या आश है, क्या आश है, संपूर्ण बनना। तो आप सब जो भी बाबा के उम्मीदों के सितारे सबने हाथ खड़े किए थे, तो आप सब आमंत्रित हैं इस प्रोजेक्ट में सहयोगी बनकर बाकी सब आत्माओं को भी ऐसे ही समान बनाने के लिए। और प्रोजेक्ट के 7 टॉपिक्स दीदी ने वैसे आप सबको बताए, पर मैं इन शॉर्ट आप सबके सामने रिपीट करती हूँ। पहला है दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक। तो आज हम सब बाबा से प्रेम भी अनुभव करते हैं, शांति भी अनुभव करते हैं, सखा के संबंध को भी अनुभव करते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, सुख और आनंद का अनुभव हम ज्यादा नहीं करते हैं। तो जब तक हम संपन्न नहीं होंगे, हम सुखी नहीं होंगे, हम किसको कितना दे सकेंगे। और अभी नजारा हम सबके सामने है कि कितनी भीड़ लगने वाली है, उम्मीद भी है। तो हर आत्मा हमसे अपनापन महसूस करे, और वो कब होगा? जब हम उन्हें सुख दे सकेंगे। और सुख कौन दे सकेगा? जिसकी दृष्टि में सबके प्रति संभाव होगा, जो स्वयं कभी दुख नहीं लेगा। नहीं तो यदि हमें किसी आत्मा से दुख मिल रहा है और हमारी दृष्टि में वो आत्मा कैसी हो गई? तो इसलिए पहले हमें खुद को सुख स्वरूप बनाना है, तब हम दूसरों को सुख दे सकेंगे। तो जब हम सुख देना शुरू करेंगे, तो जैसे दीदी ने भी बताया कि ब्लेसिंग देना और लेना, तो इससे हमारे भी अपने विघ्न विनाश होंगे और हम दूसरों के भी विघ्न विनाश कर सकेंगे। सेकंड है सर्वशक्ति संपन्न। दीदी ने आठों शक्तियों की आप सबको बहुत डिटेल बता दी है। रहम दिल, तो जो देवी देवता होते हैं वो सर्व के प्रति रहम दिल होते हैं। फिर है उद्धार मूर्त, जो दीदी ने उसके ऊपर भी स्पष्ट किया, साक्षात्कार मूर्त, स्नेही स्वरूप। इन सब की स्पष्टता दीदी ने आप सबको की है। ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो विधि रहेगा वो 6 वीक्स। हम एक एक टॉपिक लेंगे, जो 7 टॉपिक्स आप सबके सामने रखे गए हैं, 6 वीक्स एक टॉपिक चलेगा। हम उसके ऊपर गहन अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर, और 1 वीक उसकी रिवीजन चलेगी, जिसके अंदर हम इसको और अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट में जो एक यूनिकनेस रहेगी इस बार, कि हर विषय को लेने से पहले जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने भाई बहन, उन सब की स्थिति का, मन की स्थिति का एक क्वेश्चनियर के बेस पे असेसमेंट, मूल्यांकन होगा, और 6 वीक्स के बाद हम दोबारा मूल्यांकन करेंगे, ताकि चेकिंग हो कि हम उस स्थिति में कितना आगे बढ़े हैं और अभी हमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो उसको भी हम साथ साथ में लेते जाएंगे। सेकेंडली, हर 15 डेज में हमारी वर्कशॉप्स और गाइड्स के द्वारा एक उस टॉपिक की डिटेलिंग, जो भी टॉपिक हम लेने वाले हैं 6 वीक्स के बाद में, और चार्ट वो आपको सबमिट करने हैं। मंडे टू फ्राइडे जूम पर एवरी डे इसके लिए मीटिंग रहेगी, जो भी हम सुबह में आप सबको मुरली पॉइंट्स भेजेंगे, उसका पूरे दिन का जो मनन चिंतन होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जो आप सबको डिटेल्स भेजी जाएंगी, उसका सोशल मीडिया का माध्यम रहेगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल और जूम मीटिंग्स के द्वारा। किसी को भी कभी कोई ऐसे हो कि नहीं, हमें अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी स्वरूप में स्थित होने में हमें दिक्कत आ रही है, क्या उन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी उन मीटिंग्स के ऊपर में पर्सनली उनके आंसर्स दीदी के द्वारा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट का कार्य चलेगा, जो आप सबके सामने इन शॉर्ट बताया है। और जब कल पैरेलल सेशन होगा तो उसमें आप सब आमंत्रित हैं। तो जो भी भाई बहने इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। अच्छा, अभी संपूर्णता की तरफ में तो सबके हाथ खड़े थे। अच्छा, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, हमें सिर्फ स्लाइटली एक काउंटिंग का आइडिया लेना है, ताकि हॉल उस अनुसार निश्चित किया जाए, आप सब आराम से वहां बैठ सकेंगे। कल नहीं, वो श्रीकांत भाई ने बोला था पूछने के लिए, इसलिए। ओके, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में भी यदि आप लोगों को लगे कि हमें इस प्रोजेक्ट से जुड़ना है, तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो हम आह्वान करते हैं आप सबकी संपूर्णता का। अभी 1 मिनट के लिए हम बैठेंगे योग में, और अपने इस पूज्य स्वरूप को आप सब एक बार पुनः इमर्ज करें।
रचे वो नया संसार।